الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے تمہید باندھنا نہیں آتا، جو منہ میں آیا دل نے کہا وہ میں اپنے حاضرین کے دامن میں ڈال دیتا ہوں. جی، ایک ہمارے مرد قلندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے لیے مرکز ثقل ہے. ابھی آپ نہیں سمجھے، دنیا میں چار ایٹمز ہیں جس کو اربع عناصر کہتے ہیں، ہر ایک کا لیونگ سینٹر ہے، یعنی فطرتاً وہ چیز ادھر ہی جائے گی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثال کے طور پر پانی ایک عنصر ہے جس سے کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، وہ چار چیزیں ہیں: پانی، ہوا، آگ، مٹی. فور ایٹمز، اور ہر ایک کو اللہ تعالی نے اس کے رہنے کی جگہ دی ہے، فطری جگہ. پانی کا جو مرکز ہے وہ زمین کے نیچے ہے. گھڑے میں پانی آپ بند کر دیں گے، بیچارہ مجبوراً وہاں رہے گا، لیکن گھڑا اگر پھوٹا تو फिर उसकी मजबूरी खत्म हो जाती है। आजादी के साथ सांप जैसे लहराता हुआ जिधर जिधर नीचा पाता है, जहां ढलान होती है उधर वो तेजी के साथ बहता है। उसको कम हेयर माई डियर कहने की जरूरत नहीं है। अपने घर जा रहा है तो अपनी तबीयत से जा रहा है, वहां बुलाया नहीं जाता। हाँ, इस पानी को अगर चौथी मंजिल के टैंक में ले जाना है, आप पानी से कहें ए पानी दीवार पर चढ़कर चला जा तो जाएगा। उसके लिए प्रेशर की ताकत, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, मोटर लगाना और उसमें पाइप फिट करना, करंट का पावर उसमें लगाओ, मोटर चालू करो तो फुरफुर फुरफुर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर टंकी फट गई तो धड़धड़ धड़धड़ नीचे आएगा और जहां जहां गड्ढा है वहां चला जाएगा। यह है फितरत। फितरत की तरफ अगर कोई चीज जाती है तो आपको तअज्जुब है। फितरत के अपोजिट, नेचर के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो सब लोग हैरत करते हैं। पानी अगर गड्ढे में बह रहा है तो कभी किसी ने शोर नहीं मचाया होगा, अरे देखो पानी गड्ढे में जा रहा है। लेकिन यही पानी आज यह स्कूल की दीवार पर यूं चढ़ने लगे तो शायद कोई भी मेरी तकरीर सुनेगा नहीं। सब कहें देखो 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 पानी ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। पानी तो टैंक में ऊपर गया है, कभी आपको हैरत नहीं हुई, इसलिए कि उसे पंप मोटर लेकर के करंट लेकर ऊपर गया है। खुद ब खुद ऊपर नहीं गया, खुद ब खुद नीचे आता है। ऊपर जाने के लिए ताकत और पावर की जरूरत पड़ती है, समझिए अच्छी तरह। मिट्टी ये भी एक उंसुर है, इसका रहने का घर ये जमीन है। आप अपने हाथ से ताकत से मिट्टी के ढेले को जितनी ऊपर आप फेंकेंगे वो चला जाएगा। आपके हाथ का पावर जहां खत्म होता है फिर वो सनसन 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 नीचे आता है, फिर वो रुकता नहीं। घर वो अपना पहचानता है, उसका घर यहां है, वो आ जाएगा। और जब घर में आ जाता है तो सुकून पा जाता है। ऊपर ले जाने के लिए प्रेशर की जरूरत है, नीचे बुलाने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। आग ये भी एक उंसुर है। आप आग जलाओ तो क्या आग के शोले जमीन में धंसते हैं? आग का शोला कहां जाता है? ऊपर। ऐसे बोलो प्यारे ताकि मैं भी कुछ आपकी बात समझूं। आग का शोला किधर जाएगा?
ऊपर।
नीचे क्यों नहीं आता ढेले की तरह? उसके रहने का मकान नीचे नहीं है। आग का मकान कोरे नार है ऊपर, जिधर उसका घर है उधर खुद ब खुद जाएगा। हाँ, आग का शोला जलते हुए और फिर जमीन में धंसे, आप बोलेंगे क्या हुआ, किसी ने जादू कर दिया। अपने घर जहां का रहने वाला है उसकी फितरत वहां खुद लेकर जाती है और अपोजिट साइड में कोई लेकर जाने वाला होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर कहां के रहने वाले? खुद फरमाते हैं अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी मिन नूरही, मेरे नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। नूर का लिविंग सेंटर जमीन नहीं है, जमीन के नीचे नहीं है, नूर का सेंटर ऊपर है। जब हुजूर मेराज में ऊपर गए तो लोग तअज्जुब कर रहे हैं, हालांकि तअज्जुब नहीं करना चाहिए, वो तो अपने घर गए। मिट्टी ऊपर से नीचे आती है तअज्जुब नहीं, आग ऊपर जाती है तअज्जुब नहीं। मालूम है कि इन सब का घर जहाँ है वो जा रहे हैं, वहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफा जब जा रहे हैं मेराज में तो तअज्जुब मत करो, अपने घर जा रहे हैं, उनका हिरन सबका यहाँ नहीं है, वहाँ वहाँ से आए, ये तअज्जुब की बात, हैरत की बात है। जाके आए कैसे ये मुझे बताना है। लोग सारी बहस कहते कैसे गए कैसे गए, तो बोलो ढेला ऊपर से नीचे कैसे आया, और आपका शोला ऊपर कैसे गया, हवा कैसे ऊपर उठ रही है, यहाँ ऐसे कैसे भैंसे और पैसे का कोई तक सवाल ही नहीं पैदा। हुजूर तशरीफ ले गए तो कैसे गए। आला हजरत तो फरमाते हैं पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं, अकल के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। जहां अकल पगली हो जाती है वहां मुस्तफा के आने जाने को क्या कोई बताए। इरशाद फरमाते हैं कसरे दना तक उनकी रसाई, कसरे दना तक उनकी रसाई, जाते ये हैं आते ये, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए रब फरमाता है जाने को भी तअज्जुब मत करना। वो तो जा सकते थे लेकिन चूंकि ये इंसान ना समझ है, इतनी सी अकल रखता है और मेराज इतना बड़ा मौजजा है उसे समझने बैठा है। इतनी सी अकल से मेराज का बड़ा मौजजा नहीं समझने आता, इसलिए रब पहले वजाहत फरमाता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में। यहां से हुजूर खुद जा सकते थे लेकिन ये दिमाग वाले बड़े बड़े फलसफी समझ नहीं पाएंगे। तो रब फरमाता है अरे यहां से भी जब गए तो मैं लेके गया। जब अल्लाह ताला लेके गया तो तअज्जुब की क्या बात है, उसकी तो शान है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वही लेके गया कुदरत वाला। हुजूर की मेराज पर एतराज करना अल्लाह की कुदरत पर एतराज करना है, ये एक अलग बहस है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जब हुजूर उधर से चमकते दमकते आ रहे हैं तो कुरान फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा साहिबकुम वमा हवा। कसम है चमकते सितारे की जब वो ऊपर से नीचे आया, इस हैरत अंगेज मोजज़े की कसम अल्लाह जात फरमाता है। यहां नज्म से मुराद हुजूर की जात है, कसम है सितारे की। वो कौन सा चमकता दमकता सितारा था जो नूरे इलाही से चमक दमक लेकर के और इंसानों में आ रहा है। रब फरमाता है हैरत की तुम्हें बात ये चाहिए कि जब वो सितारा ऊपर से नीचे आए, यहां से गया था तो मैं ले गया था और वहां से आ रहा है तो खुद आ रहा है, हैरत। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो ऊपर से नीचे आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज मोजज़े की कसम कुरान खा रहा है और ये दुनिया को बता रहा है वहां से आना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हैरत अंगेज। मेराज, मेराज के माने आते हैं सीढ़ी के, जीना, ऊपर चढ़ने का जरिया, ऊपर चढ़ने का आला, ये इसमें आला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये पहली मेराज की मंजिल है। हुजूर डायरेक्ट नहीं गए, पहले जमीन पर चले फिर आसमान पर उतरे। प्लेन पर आप लोग बैठे हैं? नहीं, आदि लोग बैठे हैं। जब रनवे पर प्लेन चलता है तो डायरेक्ट नहीं उड़ता, ये सब मेराज से सीखा है इन लोगों ने। प्लेन कैसे उड़ता है? पहले जमीन पर सड़ता सड़सर सड़सर जाता है, और जाने के बाद भी डायरेक्ट नहीं उड़ता, जाने के बाद फिर रुकता है। हम तो रोजाना सफर करते हैं, पहले जमीन पर चलता है फिर रुकता है, फिर उसकी आवाज तेज होती है, फिर वो थोड़ी दूर जमीन पर चल करके फिर जुई, फिर झुक। ये है उसका टेक्निकल वर्क। ये मेराज से सीखा उन्होंने, डायरेक्ट नहीं उड़ाते, पहले जमीन पर चलता है और फिर ऊपर उड़ता है। मेरे मुस्तफा ने सलीका बता दिया है कि तुम प्लेन बनाओगे तो मेरे मेराज का सदका वहां भी तुमको भीख मांगनी पड़ेगी। डायरेक्ट यूं फुर से नहीं उड़ेगा, पहले यूं जाएगा फिर यूं उड़ेगा। तो मुस्तफा की पहली मंजिल मस्जिद अक्सा है, यूं, और वहां से चले फिर ऊपर। अब वहां गए तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ये तो थोड़ी दूर जाकर के हजार दो हजार फीट चल करके आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसे नीचे ही उतरना पड़ेगा। और मेरे मुस्तफा जब चले, उनका प्लेन बुराक चला तो यूं जाकर के यूं उड़ा तो पहला स्टेशन आया, पहला आसमान। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस पहले आसमान में एक गेट बना है, और जब से बना है वो गेट कभी किसी के लिए, न किसी नबी के लिए, न किसी फरिश्ते के लिए खुला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा, आसमान में जितने गेट है उसमें तो सब आते जाते रहते हैं, मैंने एक स्पेशल गेट बनाया है आसमान में, ए जिब्रील आम गेट से मेरे मुस्तफा को मत लाना, उस गेट से लाना जो जब से बना है आज तक बंद है। हजरत जिब्रील सरकार की सवारी लेकर वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद दरवाजे को नोक किया, उधर पहरेदार फरिश्ता एक खड़ा था, फौरन जैसे खट खट की आवाज आई, फरिश्ते ने उधर से पूछा, मन मानता ये कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? तो जिब्रील कहते हैं, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। तो जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर के पहरेदार ने दरवाजा खोला नहीं। दूसरा सवाल करता है, मम्मा का अकेले आए हो कि किसी के साथ आए हो? किसी के साथ आए हो, अकेले आए हो, ये क्यों पूछ रहा है? मुफस्सरीन फरमाते अगर अकेले जिब्रील जाते तो दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए कि वो गेट मुस्तफा के लिए ही बना था। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ मेरे साहब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही नबी का नाम सुना, खट से गेट खुल गया। और जब वो नबी के लिए बना था तो जिब्रील को इधर ही रुकना था, नहीं रुके, नबी का दामन पकड़ लो تو جو گیٹ نبی کے لیے مخصوص ہے خادم کو بھی گزرنے کا چانس مل جاتا ہے. یہ حضرت جبریل کی معراج, یہ نبی کی معراج نہیں ہے, یہ جبریل کی معراج تھی کہ جس دروازے سے کبھی انہیں جانے کا چانس اور موقع نہیں ملا, مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. تو معراج النبی باب المعراج سے گزرنے کا شرف حضرت جبریل کو مل رہا ہے. پھر یہی نہیں, سات آسمان اور سات گیٹ ایسے ہی بند تھے, ہر گیٹ پر جبریل جاتے تھے, وہاں سے آواز آتی ہے من انتا, کون ہو تم, کہتے انا جبریل, تو ادھر سے فرشتہ بولتا ہے جبریل مما کا, تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے, کہتے ہاں میرے ساتھ مصطفیٰ پیارے ہیں, تو کھل جاتا. سات گیٹ میں حضرت جبریل مصطفیٰ کے صدقے میں معراج کی رات میں معراج حاصل کرتے ہوئے تشریف لے گئے. جبریل کو معراج ملی اور کیا ہم خادموں کو نہیں معراج ملے گی؟ انہیں گزرنے کا موقع ملا. اور معراج کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ قرب معبود, اللہ تعالی سے نبی قریب ہوئے, یہی ہے معراج. یہاں سے وہاں جانا معراج نہیں ہے, یہ تو سفر ہے. ناگپور سے آنا یہ جلسہ نہیں ہے, جلسہ تو یہ ہے, وہ میرا سفر تھا. معراج یہ نہیں ہے کہ حضور یہاں سے وہاں تک پہنچے, معراج تو اصل وہ ہے کہ اللہ سے رسول ملے. اور جب ملے تو کیسے ملے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلا فکان قاب خوشین دنا فت دلا فکان قاب خوشین او ادنا. دنا قریب ہوئے, کتنے قریب ہوئے؟ جیسے دو کمانوں کا چلا, چلا سمجھے, تبلیغی کا چلا نہیں بول رہا ہوں. دو کمان اگر آپ ایسے ملائیں گے تو ایک کمان کی وہ لکڑی ہوتی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے, دوسری کمان ایسی ہوتی ہے, اور بیچ میں دونوں کمان کے دھاگا رہتا ہے. جب آپ دو کمان کو ایسے لگائیں تو یہ بیچ کا دونوں دھاگا, اس کے بیچ میں تھوڑا سا باریک سا گیپ رہتا ہے, دونوں دھاگے ملتے نہیں ہیں. گیپ جو رہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا میرا حبیب اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے چلے میں قربت اور نزدیکی ہوتی ہے, اتنا قریب ہوا. صرف یہی نہیں فرمایا, آگے فرماتا او ادنا, بلکہ یہ جو گیپ تم دو کمانوں میں دیکھ رہے ہو اس سے بھی قریب میرا محبوب ہوا. اب کتنا قریب ہوا؟ وہ تو قریب ہونے والا جانے, قریب کرنے والا جانے. بہرحال قریب ہوئے حضور, اسی کا نام ہے معراج. یہاں سے وہاں جانا معراج نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لینا. ان کی معراج ہے قرب معبود. مصطفیٰ کی معراج کا نام ہے اللہ سے قریب ہونا. حضرت جبریل کو معراج ملی صرف گیٹ سے گزرنا, لیکن رسول کو جو قرب اور نزدیکی اللہ سے معراج کی رات میں حاصل ہوئی, وہ جناب جبریل کو حاصل نہیں ہوئی. خوشی کا ایسا پیغام دے رہا ہوں میرے دوستو, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے قریب ہو کر کے آئے, اور قرآن کہتا ہے اے بندو سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو رب نے اپنے بندوں کو سجدہ کرنے کا ڈھنگ سکھایا کہ سجدہ کیسے کرو گے. وہ ڈھنگ کیا ہے؟ پہلے آ جاؤ مسجد میں,
मुस्तफा की मेराज कहां से शुरू हुई? मस्जिद से। आपकी मेराज भी मस्जिद से सज्जसा शुरू हो रही है। हुजूर अकरम घर में थे, सो रहे थे, और जिब्रील अमीन वहां से लेकर मस्जिद हराम शरीफ में लेकर हाजिर हुए। ये नबी के मेराज की यहां से सफर का आगाज हो रहा है। मोमिन की मेराज भी देखो कैसे हो रही है, दुकान में हो, घर में हो, यहाँ जिब्रील लेने नहीं आते, यहाँ अल्लाह का मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस्सलाह, मैं अल्लाह का मुनादी हूँ, चलो नमाज की तरफ। अब घर से निकलो और मस्जिद में पहुंचो, अब तुम्हें मेराज हासिल होगी। और वहां जाकर के सीधे सजदा करने का हुक्म नहीं है, थोड़ा सफर करना पड़ता है। वहां जाकर कहो अल्लाह अकबर, मौला सबसे बड़ा तू है, और कान तक हाथ ले गए। कान तक हाथ कब ले जाता है बंदा, मालूम है? नहीं। जब किसी के सामने वो शर्मिंदा होता है तो कहता भाई माफ करो, कान पकड़ो, है ना रिवाज? ये कान पकड़ना इंतहाई तजल्लुल, नदामत और शर्मिंदगी की अलामत है। तुम रब के करीब होने जा रहे हो, पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहे हो और अल्लाह से कह रहे हो मौला तू बड़ा है। मैं कितना बड़ा सेठ हूं, बड़ा नहीं, मिनिस्टर हूं, बड़ा नहीं, प्रधानमंत्री हो गया, बड़ा नहीं, बादशाह हूं, बड़ा नहीं, मौला सारे बड़ों से बड़ा तू है, अगर मैंने बड़ाई की है तो आज कान पकड़ पाओ, ताकि तुम्हारे नफ्स में जो गुरूर का मैल कुचैल है, लफ्ज अल्लाह अकबर कहने से वो मैल धुल जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर कोई मैल कुचैल नहीं था, लेकिन मेराज के सफर पर जा रहे हैं तो फरिश्तों को जिब्रील और मीकाईल को हुक्म हुआ था, हकीम ने मेरे हबीब को लाओ और उनका दिल सीना चाक करके निकालो और दिल का भी ऑपरेशन करो और फिर जमजम के पानी से उसे धो। ये बंदों को ये लिए एक सबक है, इबरत है। आज तुम्हारी मेराज तो पहले जबान और दिल को साफ कर लो, गुरूर और निखवत के मैल कुचैल से अल्लाह अकबर कह के अपने बातिन को साफ कर लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑपरेशन हुआ। आज ये मेडिकल साइंस बहुत कूद चाल रही है, हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, बोलते हैं दिल को बाहर निकाल करके सर्जरी करते हैं। अरे तुम क्या करोगे, मेरे मुस्तफा ने तो मेडिकल साइंस पर मेराज के सफर से पहले ही एहसान कर दिया था और दुनिया को बताया इंसान का हाथ बाहर निकाला जा सकता है और उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, मेराज ने उसे पॉसिबल कर लिया और इन भिखारियों ने मेराज का सदका पाया है और ओपन हार्ट सर्जरी करने का सलीका सीखा। इन्होंने तो ओपन हार्ट सर्जरी का सलीका सीखा। और ऐ लोगों, नमाज तुम्हें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करा रही है, हार्ट बंद है लेकिन गुनाहों से पाक और साफ तुमको करती चली जा रही है। दिल में जो बेचैनी है उस बेचैनी को सुकून बख्शती है ये नमाज। तफसील के साथ में नहीं बता सकता, यहां से तुम्हारी मेराज शुरू हो रही है और जब रिकात खत्म होती है तो बंदा सजदा करता है। इसी को कुरान कर फरमाता है कि सजदा कर और तू मुझसे करीब हो जाए। सबसे ज्यादा कुर्बत बंदे को अल्लाह से उस वक्त होती है जब वो सजदे में सर रखता है। आम से सफर शुरू हुआ, और सजदे में जाकर क़ुर्ब माबूद हासिल होता है। यही नमाज लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लौटे थे कि ऐ लोगो, मूसा ने भी मेरा दीदार किया, जिब्रील ने दरवाजे से प्रवेश किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सारे नबियों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। ऐ लोगो सुनो, अगर तुम मेरी मेराज की खैरात लेना चाहते हो तो अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज हर मोमिन की मेराज है। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? यहां से मत बोलना मेरे माई बाप, इंशाअल्लाह बोलो तो यहां से बोलो। दिल से अगर बोला है इंशाअल्लाह तो बहुत मुझे उम्मीद है कि आपका ये इंशाअल्लाह कबूल हो गया तो फजर से तुम नमाजी बन जाओ और मेराज की खैरात तुमको मिलती चली जाएगी। इसलिए इंशाअल्लाह जब बोलो तो दिल से बोला करो, दिखाने के लिए नहीं, मतलब के लिए इंशाअल्लाह आऊंगा। आजकल मुसलमान क्या करता है, जहां नहीं जाना है बोले इंशाअल्लाह आ जाऊंगा। ये फक्कड़बाजी छोड़ दो, इंशाअल्लाह दिल से कहो। एक साहब बड़े एजुकेटेड थे, पुराने जमाने की बात है जब कार वगैरह नहीं चलती थी, बाइक नहीं थी, उस वक्त खाली घोड़े और हाथी की सवारी होती थी। वो घोड़े के बड़े शौकीन थे और मालदार थे, पढ़े लिखे थे। वो जा रहे थे, घोड़ा पुराना बेच दिया था, नया घोड़ा खरीदने के लिए महीने में एक मर्तबा उनके गांव से बाहर घोड़ों का बाजार लगता था। ये जा रहे थे घोड़ा खरीदने के लिए। उनका एक दोस्त पुराने जमाने का बड़ा नमाजी नेक था, वो असर की नमाज के लिए वो भी जा रहा था, उधर से वो आए, दोनों की मुलाकात हुई। तो कहा साहब कहाँ जा रहे हो? तो कहा बाजार जा रहा हूँ, घोड़े का बाजार लगा है, वहां जाकर के पुराना घोड़ा बेच दिया है, अब जाकर के वहां घोड़ा खरीदूंगा। तो ये बेचारा नमाजी था, उसने कहा भाई घोड़ा खरीदूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह तो आप कह देते कि जा रहा हूँ इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदूंगा। तो वो बिगड़ गए, बोले इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है, जेब में रुपया मेरे, बाजार में घोड़ा वहां, जाऊंगा खरीद लूंगा, इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है। तो ये बेचारा नमाजी आदमी चुप हो गया, चला गया मस्जिद में। और शाम को जब मगरिब की नमाज पढ़ करके ये बेचारा निकल रहा था तो उधर से वो मुंह लटकाए चले आ रहे थे। कहा साहब घोड़ा नहीं लाएगा? तो बोले इंशाअल्लाह मैं गया था बाजार, इंशाअल्लाह एक घोड़ा पसंद आया, इंशाअल्लाह मैंने भाव तय कर लिया, इंशाअल्लाह जब मैं पेमेंट करने के लिए गया तो इंशाअल्लाह मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में हाथ रुका नहीं, बाहर निकल गया, तो मैंने देखा इंशाअल्लाह मेरी जेब कट गई थी, इंशाअल्लाह मेरा पैसा चला गया। तो वो बेचारे सोचने लगे जहां इंशाअल्लाह नहीं कहने का है वहां इंशाअल्लाह कह रहा है, ये क्यों कह रहा है? उसने कहा था इंशाअल्लाह कह लो, लेकिन इसने इनकार किया था। अब पैसा चला गया, जेब कट गई और मुंह लटकाए वापस आ रहे, अब आप बार बार इंशाअल्लाह मतलब के लिए कह रहे, अब तो गया हुआ पैसा वापस आएगा, जब कहना था इंशाअल्लाह तब कहते और दिल से कहते तो मेरा यकीन है कि उसकी जेब नहीं कटती। इसलिए इंशाअल्लाह कहो तो पूरी खुलूस नियती के साथ करो। बहरहाल इंशाअल्लाह आप लोग नमाज पढ़ेंगे, मैं आपसे बदगुमानी नहीं करता हूं, मेरी माँ बहनें भी कम नहीं है आपसे, ये हवा की बेटियां, आप तो चुप हैं लेकिन इनकी आवाज बंद नहीं है, वैसे कम बोल रही हैं लेकिन आवाज आ रही है। और सबके पास तो नहीं, कुछ ऐसी औरतें हैं कि उनके पास सारंगी जरूर होती है, सारंगी समझे, की कहां तो उनका बाजा तो बजता रहता है। औरतें अल्लाह ताला इनकी जबान को महफूज रखे। मेराज में जब हुजूर गए तो कुछ ऐसी औरतें मर थे जिनकी जबान काटी जा रही थी। हुजूर ने जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ये कौन है? वहां भी बोलेगा जब वो हुजूर को मालूम नहीं था जब ही तो पूछे। अबे जिब्रील का इम्तिहान ले रहे थे हुजूर कि बताओ ये कौन है। तो जिब्रील ने फौरन जवाब दिया, ये वो है जो चुगली करते थे, रिश्वत करते थे, आज जहन्नम की आग की टैंकी से इनकी जबान काटी जाती। मेरी माँ बहनों, बड़बड़ करना छोड़ दो, रिश्वत चुगली छोड़ दो। औरतों को भी मैं नसीहत करता हूँ, तुम भी सुनो और मर्द भी सुने। खुदा की कसम, इंशाअल्लाह दिल से अगर कहता है कोई तो उसका इंशाअल्लाह कबूल होता है, तो उसके अमल में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। हमारी माँ बहने अपने बच्चों को तरबियत दें और उन्हें नमाजी बनाएं। हजरत बाबा फरीद का नाम आपने सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है। ये जब पैदा हुए तो इनकी वालिदा माजिदा आरिफा, वलिया, जाहिदा, नमाजी सब कुछ थी। बाबा फरीद को झूले में डाल देती थी और नमाज अदा करती थी। बाबा फरीद शुरू से लेकर, पैदाइश से लेकर देखते रहे, समझते नहीं थे कि माँ क्या कर रही है। जब थोड़ी समझ आई तो एक दिन पूछते हैं, माँ ये रोजाना सर जमीन पर क्यों मार मार रही है? क्या सर में कोई तकलीफ है कि बार बार जमीन पर रखती है, उठाती है? तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं, मैं नमाज पढ़ती हूँ। बेटा पूछता है, फरीद पूछते हैं, ये नमाज क्या है? बोले उस अल्लाह की इबादत है जिसने तुझे पैदा किया, मैं मुझे पैदा किया, जमीन और आसमान पैदा किया, उस रब की मैं इबादत करती हूँ। बच्चा बोलता है कि उसकी इबादत करने से मिलता क्या है? बच्चों को सबसे बड़ी बात यही होती, पैसा मिलता है कि चॉकलेट मिलता है, वो डिमांड करते हैं। बाबा फरीद बोलते हैं, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? तो माँ बोलती है, नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। बाबा फरीद को शक्कर बहुत पसंद थी। बोले नमाज पढ़ूंगा तो शक्कर मिलेगी? कहा हाँ। कहा मैं भी अब नमाज तुम्हारे साथ पढ़ूंगी। वालदा खुश हो गई, अब ये नमाज पढ़ेगा तो छोटी छोटी शक्कर की पुड़िया बनाकर एक बर्तन में महफूज कर लिया था। हर नमाज के बाद मुसल्ला बाबा फरीद का भी बिछा देती थी माँ और अपना भी, लेकिन बाबा फरीद के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। और उसके बाद नमाज खत्म होती थी, बाबा फरीद कहते शक्कर, कहा मुसल्ला उलट। जब मुसल्ला उलटते तो शक्कर की पुड़िया पा जाते थे। रोजाना एक साल, दो साल, तीन साल, कभी अल्लाह की बंदी पुड़िया रखना भूली नहीं, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। अगर मोबाइल होता ना, मोबाइल देखते देखते उसी में रह जाते। लेकिन वो मोबाइल अगर होता तब भी वो आबिदा जाहिदा था। आजकल तो मोबाइल के ऐसी ये हमारी माँ बहनें पाबंद हो गई हैं। एक कार्टून मैंने देखा था सैयद साहब, कार्टून की सूरत ये थी कि बच्चा भी लेटा था और औरत का हस्बैंड भी लेटा था, और ये अपना मोबाइल से बातचीत करती जा रही थी। जब बच्चा रोने लगा तो दूध की बाटल उठाया तो बजाय बच्चे को मुंह में देने के शौहर के मुंह में दे, क्योंकि मोबाइल पर सारा दिमाग उसका था, उसको पता नहीं कि बेटा है कि शौहर है। दूध की बाटल शौहर के मुंह में घुसा, तो बोलता अरे पगली, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, वो रो रहा। तब उसने मोबाइल से नजर हटाया तो बच्चे के मुंह में डाली। ये है बेखबरी, कौन क्या करता है खबर नहीं। ऐसे दूसरा कार्टून एक देखा था मैंने पेपर में, वो मोबाइल से बात कर रही है और बेटा लेटा रो रहा है, रो रहा है, ये खड़ी किसी से बात कर रही है। जब वो रो रहा है तो उसको बोलती है चुप चुप, फिर बात करने लगते हैं। बहुत जोर से चीखा बच्चा, तो उसने क्या किया, बच्चे को गोद में लिया लेकिन लेने की पोजीशन ये थी कि मुंडी नीचे पैर हो। तो उसका शौहर बोलता है पगली देख तो बच्चे का सर नीचे है और टांग ऊपर है, ये है मोबाइल की करिश्मा साजी। मोबाइल होता है तो औरतें दूसरों को ख्याल नहीं रखती हैं। बच्चा रो रहा है रोने ज्यादा से ज्यादा ये कि मोबाइल दे देगा दे देगी तब बच्चा चुप हो जाए। ये भी गलत तरबियत है। बचपन से मोबाइल देकर बच्चों को आवारा तुमने बनाया। वो ऑप्शन जितने हैं सब बच्चों को याद हो जाता है। वो अम्मा को भी सिखाते हैं अम्मा ये ऑप्शन ये है ये इधर है वो इधर है ये इधर है। मेरी माँ बहनों तुम बच्चों को आवारा बनाती हो और न वो स्कूल जाता है और न तालीम की तरफ तवज्जो देता है। न मोबाइल तुम रखो न बच्चों के हाथ में दो तब ये सही तरबियत होगी। बाबा फरीद की वालिदा कहती है बेटा शकर की पुड़िया मिलती है, रोजाना नमाज पढ़ने के वक्त शकर की पुड़िया रख देती थी। 3-4 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। जब बाबा फरीद मकतब में पढ़ने लगे तो एक दिन दोस्तों ने कहा जंगल में चलेंगे इंजॉय करने पिकनिक मनाने। आए अम्मा से इजाजत ली कि अम्मा मैं जा रहा हूँ पिकनिक मनाने इजाजत। माँ ने कहा जाओ लेकिन जोहर से पहले आ जाना। ये ताकीद इसलिए की थी कि जोहर की नमाज जाकर जंगल में अगर पढ़ेगा तो शकर की पुड़िया मिलेगी नहीं, इसलिए कहा तुम घर पर आके नमाज पढ़ना। जंगल में दोस्तों के साथ इतना उनको मजा आया कि जोहर की अजान बस्ती से आने लगी। बाबा फरीद कहने लगे मैंने माँ से वादा किया था जोहर से पहले आ जाऊंगा, यहाँ तो अजान हो रही है। बच्चों से कहा चलो वजू करो, वहाँ चश्मा बह रहा था, यही नमाज पढ़ के फिर घर चलेंगे। सब बच्चों ने वजू किया, बाबा फरीद ने भी वजू किया, अपने अपने रुमाल बिछाए। आज ये नन्हे नन्हे ये मुसल्ली नन्हा इमाम नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद मुसल्ले पर बाबा फरीद खड़े हो गए, बड़े इत्मीनान से कहते हैं अपने अपने कपड़े उठाओ नीचे शकर की पुड़िया मिलेगी। जहन में वही बात थी कि नमाज से शकर की पुड़िया मिलती है, मुझे मिली है तो इनको भी मिलेगी। एतिकाद और ईमान जो होता है ये बचपन का बड़ा मजबूत होता है। सबने अपने अपने कपड़े उठाए तो ये बड़ी बड़ी शकर की पुड़िया मिली। अरे बाबा फरीद ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला मिला, नमाज पढ़ो शकर खाओ। बाबा फरीद की माँ रो रही है दुआ कर रही है मौला फरीद की लाज रखना, कहीं नमाज के एतिकाद में फर्क न आने पाए। इधर माँ रो रही है, बाबा फरीद हंसते घर में दाखिल हुए, माँ को रोता बिलकता देखा, कहा माँ क्या हो गया? कहा बेटा तेरे इंतजार में रो रही। तो कहने लगे अम्मा यहाँ नमाज पढ़ता था तो इतनी इतनी पुड़िया मिलती थी, जंगल में पढ़ा तो इतना बड़ा पूड़ा मिला, और जो मजा वहाँ आया घर की पुड़िया में नहीं आता था। माँ ने कलेजे से लगा लिया, बेटा आज राज की बताती हूँ, वो पुड़िया रोजाना मैं रखती थी लेकिन तू नमाज पढ़ रहा है पुड़िये की लालच में, तो रब ने तेरे इस पाबंदी नमाज की लाज रखी और तेरा एतकाद जो नमाज पर है उसे जायल नहीं होने दिया और जन्नत से फरिश्तों के हाथ पुड़िया भेज करके तुम्हारे एतकाद को कायम हो भाई। ये किसकी तरबियत थी कि जन्नत से पुड़िया आ रही है? मोबाइल वालों की? ये नमाजी माँ की तरबियत थी। काश कि हमारी माँ बहने दूध पिलाए बच्चे को तो बिस्मिल्लाह कैसे। आज दूध पिलाती क्या है? आज तो अमूल स्प्रे लैक्टोडेक्स नंबर 1 नंबर 2 ये सब दूध चलता है। बेचारा माँ के दूध से महरूम रहता है। अरे माँ का दूध पिएगा जब ना माँ की मोहब्बत करेगा।
बब्बे का दूध पिया, ना अब्बे को कुछ जाना, ना माँ को कुछ जाना। माँ को कहता है मम्मी और बाप को बोलता डेडी। डेडी और डेडी में क्या मिलेगा दोस्तों? पहले अब्बा, अम्मा, अम्मी, अब्बू ये बोलते थे, अब जबान बदल गई, अंदाज बदल गया, अदब और तरीके का तरीके सब बदल गए हैं। मेरी माँ बहनों, मोबाइल की लालच से अपने हाथ को पाक कराओ, अपने बच्चों को आवारा मत बनाओ, उनके सामने नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारा बच्चा हुसैन के सजदे की यादगार बन करके मस्जिद में नमाज और सजदा अदा करे। और कुछ तो पीरों का भी इसमें बहुत बड़ा दखल है, नमाज खुद नहीं पढ़ते हैं और पीरी मुरीदी करते हैं। अल्लाह महफूज रखे उन पीरों से। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पीर वो है जो आवारा मुरीद को जन्नत के रास्ते पर चला दे। पीर वो है जो इस्लाम की बातों से मोहब्बत नहीं करता, वो मुस्तफा जाने रहमत पढ़ने का आदि बन जाए। अरे पीर वो है जो बेनमाजी हो नमाज के लिए ऐसा सहदाई बन जाए कि जब भी अजान की आवाज सुने तो मस्जिद की तरफ चलने लगे। पीर का काम ये है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो कौन सा बड़ा काम करके आए? जो हुआ वो तो हुआ, वो किसी को नहीं मालूम। सबसे बड़ा काम ये करके आए कि सारे उम्मती को नमाजी बना दिया। मेराज नमाज बनाने का एक मौजजाना तरीका था। पीराने इजाम वही है जो बेनमाजी मुरीदों को नमाजी बना दे। मेराज का तोहफा यही है। अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मुरब्बियाने इफलां को ऐसी तौफीक अता फरमाए कि अपने किरदार से उनको नमाजी बना दे। मेरी माँ बहनों, हजरत बाबा फरीद की माँ से सबक हासिल करो और अपने बच्चों को खुदा रसीजी का दर्श अपने कैरेक्टर और किरदार से दो। बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाओ, इंशाअल्लाह वो दूध जो बिस्मिल्लाह करके पी रहा है बच्चा, एक एक कतरे में नूरे ईमान होगा और अमल की बरकत होगी, वो बच्चा बड़ा होकर गुलामे हुसैन बनेगा। इस मेराज के जलसे में यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। इस पैगाम को आप कलेजे से लगाओ, हमारी माँ बहने भी उसे सुन करके अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करो। मदरसे में बच्चों को भेजो, स्कूल भेजने का मुखालिफ नहीं हूँ, स्कूल भी भेजो वो भी जरूरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कलमा तो याद कराओ, उन्हें हुजूर के नाम याद कराओ, सहाबे किराम के हालात सुनाओ, गरीब नवाज की स्टोरी बताओ, गौसे आजम की करामत बताओ। अगर रोजाना माँ एक एक लफ्ज उसको सिखाती रही तो जवान होकर अली असगर का और अली अकबर का जोश लेकर के वो जवानी की मंजिलें तय करेगा। मेरे दोस्तों, इस पैगाम को अपने सीने से लगाओ। माशाअल्लाह इतना कामयाब मजमा मेरे सामने है, ये आप हजरात गंगावती वालों की मेहनत है, अजीजम नूरुद्दीन की मेहनत है, उनके क्या हुसैन अलहाज हुसैन साहब की ये मुजाहिदाना शान है, और हमारे दूसरे लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं, सब का इसमें तआवुन है। और वो अभी कुर्सी में बैठे नहीं, क्या नाम मोहम्मद उस्मान साहब की सखावत, नाम बहुत अच्छा है, उस्मान नाम है उस्मान। कितने लाख रुपए दिए? 9 लाख। हमारे यहाँ मशहूर था जो बहुत बड़ा सेठ है, उसको कहते हैं नौलखी है। नौलखी का मतलब उस जमाने में बहुत बड़ा सेठ, अरबपति, उसको नौलखी कहते थे। इन्होंने 9 लाख दे करके मेरे दोस्तों अपने दीनदारी की नौलखी होने की सर्टिफिकेट हासिल कर ली, और मुझे अच्छा लगा। उन्होंने अपने नाना नानी
और वालिदैन जो इंतकाल कर गए हैं ये जो कुछ पैसा दिया है उनके इसाले सवाब के लिए दिया है। वालिद साहब मरहूम हुसैन साहब, वालिदा मोहतरमा हज्जन खातून बी साहिबा, नाना मरहूम फखरुद्दीन साहब, नानी मरहूमा हुसैन बी साहिबा, इनकी मगफिरत के लिए आप सब मिलकर के दुआ करो। अल्लाह इन तमाम मरहूमीन की मगफिरत भी फरमाए और कब्र को वसी बनाए, रहमतो नूर से भर दे, अपने जवारे रहमत में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी दिया है सबके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाकर उनको आखिरत में ऊंचे से ऊंचा मकाम अता फरमा, अपने हबीब की शफाअत से उन्हें शादकामी अता फरमा। जितने लोग इसमें मुआविन हैं सबके लिए, मैं ही नहीं ये सादात के किराम बैठे हैं, उलमाए किराम मशाइखे इज़ाम बैठे हैं, सब दुआ करते हैं और आप लोगों ने आमीन कही। एक भी इसमें अल्लाह का मकबूल बंदा होगा तो उसकी आमीन भी कबूल होगी और दुआ की गई ये मकबूल बंदे उन्होंने आमीन कही है इंशाअल्लाह दुआ कबूल है और मरहूमीन की मगफिरत हो गई हो गई हो गई। वमा अलैना इल्लल बला।